पृष्ठ संख्या 162। इसका अर्थ क्या है? क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निराला शिवाजी का पत्र में जिस देवद्विज देश के प्रति समर्पण की बात करते हैं, वह उसी के प्रतिष्ठाता और प्रकांतर से उसी के शिकार भी हैं? क्या यह माना जाए कि निराला अपने इस सारे अतीत स्मरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की चर्चा में उसी द्विज संस्कृति पृष्ठ संख्या 163 के उत्थान के पक्षधर हैं? क्या वह उसे विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उत्सुक हैं? मुझे बराबर लगता है कि अपने रचना जीवन के कुछ वर्षों तक तो वह इस धारणा से ग्रस्त रहे हैं, लेकिन भारतीय समाज के बृहत्तर और गहरे अध्ययन के पश्चात उन्होंने अपनी इस वैचारिक भूल का बड़ी ही तेजी से परिमार्जन किया है। सहसा उनके विचारों की पूरी धुरी ही उल्टी घूमती हुई दिखाई देती है। वह अपनी पूरी मेधा और शक्ति से सवर्ण विरोधी रुख अपनाते हुए लगते हैं। यहाँ तक कि तुलसीदास जैसी कविता में भी तुलसीदास की प्रमुख चिंता में शूद्रों के पतन और शोषण का वे बड़ा ही हृदय विदारक चित्र खींचते हैं। चलते फिरते पर निसहाय वे दीन छीड़ कंकाल काय, आशा केवल जीवनोपाय उर उर में रण के अश्वों से शस्य सकल दलमल जाते ज्यों दल के दल, शूद्र गण क्षुद्र जीवन संबल पुर पुर में वह शेष श्वास पशु मूक भाष पाते प्रहार अब हताश्वास, सोचते कभी आजन्म ग्रास द्विजगढ़ के होना ही उनका धर्म परम, वह वर्णाधम रे द्विज उत्तम वह चरण चरण बस वर्णाश्रम रक्षण के। तुलसीदास का उदाहरण मैंने इसलिए भी लिया कि तुलसी के नाम पर ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का ठप्पा लगा हुआ है। यह ठप्पा ना भी हो, यह संदर्भ में उपयुक्त हो, तब भी यह तो सच है कि तुलसीदास अपनी संपूर्ण रचनात्मकता द्वारा द्विज संस्कृति के ही पोषक थे। श्री विजय देव नारायण शाही ने तो यह भी निष्कर्ष निकाला है कि इस संबंध में तुलसीदास और अकबर के बीच एक अनकिया मूक समझौता भी मालूम पड़ता है कि तुम ब्राह्मणों को मत छुओ, हमें शूद्रों से कुछ लेना देना नहीं। यह समझौता ना भी हो तो भी ब्राह्मण और गाय तुलसीदास के सामने महत्व की पहली स्थितियां हैं। तुलसीदास की इस मानसिक बनावट में निराला ने शूद्र चिंता को रखा है। यह निश्चय ही तुलसीदास के चरित्र की संहिति को थोड़ा सा भंग करके उसमें नए अर्थ की प्रतिष्ठा है। यह शूद्र चिंता दरअसल निराला की असली चिंता है। शायद वह अपनी पिछले विचारों के परिमार्जन के लिए ही इतना बड़ा खतरा उठाते हैं कि उसे तुलसीदास की चिंता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही नहीं, सवर्णों के विरुद्ध पृष्ठ संख्या 164 उनका आक्रोश कई रूपों में लगातार जाहिर होता है। कहीं उन्हें वह सूत बंदीगण कहते हैं, कहीं द्विज चटुकार कहकर अपनी नफरत जाहिर करते हैं, कहीं कान्यकुब्ज कुल कुलांगार कहकर उन्हें विश्वासघाती क्षुद्र अनपढ़ गंवार और संस्कृतहीन बतलाते हैं, और कहीं अपने को उपेक्षित बताकर अपने ब्राह्मण होने का पश्चाताप करते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कि यह वर्ण व्यवस्था और शूद्रों की अवमानना उन्हें कहीं न कहीं मथती रहती है। उन्हें ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने की बात भी बेमानी लगती है। वर्ण व्यवस्था पर सोचते हुए वह अंततः इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय समाज में अब कोई ब्राह्मण क्षत्रिय रह ही नहीं गया है, सभी शूद्रत्व को प्राप्त हो गए हैं। उन्हें वर्ण व्यवस्था का वह पुराना संस्कार, उसकी रूपरेखा पूर्णतया विघटित हो गई दिखाई पड़ती है। ना निमिषेत शूद्र राज्य का समर्थन करते हुए भी वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जब सभी शूद्र हो गए हैं तो निवास न करने का सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए वर्तमान हिंदू समाज का विश्लेषण करते हुए वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जितनी बार ब्राह्मणों ने संस्कृत की पुनर्रचना के लिए सिर उठाया, उतनी ही बार उन्होंने जनसाधारण पर किसी न किसी बहाने से अत्याचार किया। सारी सवर्ण जातियाँ सदियों से पिस रहे इस जनसाधारण को कभी किले के रूप में, कभी फौजों के रूप में अपनी सुरक्षा सुविधा और लाभ के लिए इस्तेमाल करती रहीं, अपने तथाकथित उच्च स्पर्श से उन्हें गदगद करती रहीं, अपने द्वारा अपने लाभ और अपनी अस्तित्व रक्षा के लिए निर्मित सभ्यता संस्कृति का जादू चलाकर, धर्म का नशा चढ़ाकर उन्हें कितनी बार उनके निज के रक्त में स्नान करवाती रहीं। हर बार ब्राह्मण पोथियों में इस जनता को दबाए हुए आए और अपना मतलब निकाल ले गए, लेकिन अब यह सब नहीं होने का। इस संदर्भ में उनका भावुक, ईमानदार, आवेशपूर्ण विश्लेषण दर्शनीय है। शूद्र शक्तियों से यथार्थ भारतीयता की किरणें फूटेंगी। वही भविष्य के ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य हैं, और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि द्रिप्त जातियां शूद्र। खुदाई सजा ऐसी ही होती है। चिरकाल तक लड़कर ब्राह्मण क्षत्रिय पस्त हो गए हैं। उनका कार्य अब वे जातियां करेंगी जो अब तक सेवा करती आई हैं। भारत अभी तक पराधीन है जब तक वे नहीं जागती। उनका कर्म के क्षेत्र पर उतरना भारत का स्वाधीन होना है। वर्तमान हिंदू समाज प्रबंध प्रतिमा पृष्ठ 179। अपनी इसी नूतन विचारधारा को उन्होंने नए पत्ते और बेला में अनेक रूपों में अभिव्यक्त किया है। एक, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला। पृष्ठ संख्या 165। धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला। दो, खुला भेद, विजयी कहाए हुए जो लहू दूसरे का पिए जा रहे हैं। यह द्रष्टव्य है कि उनकी जनसाधारण की सूची में कहीं भी कोई सवर्ण नहीं आता। वह ब्राह्मण या क्षत्रिय किसानों का जिक्र कहीं नहीं करते। उनकी निगाह पूर्णतः सदियों से मार खाए निम्न वर्ग की असहाय जनता पर है। इसीलिए जिस पावन, निरामय, उच्च, स्वतंत्र, तत्पश्चर्यापूर्ण भारत का चित्र वह भारत ही जीवन धन जैसी कविताओं में खींचते हैं, वह एक स्वप्न, एक अवास्तविकता साबित हो जाता है। इस तरह के चित्रों या परिकल्पनाओं से उनका लगाव टिक नहीं पाता। अपनी इसी मोहभंग की मनाही स्थिति में बड़ी तेजी से वह उपेक्षित के उन्नयन की भूमि पर उतरते हैं। राष्ट्रीय मुक्ति के आह्वान की उनकी सारी शैली एकदम से बदल जाती है। पहले जब वह स्मरण करो बार बार कहकर भारतीय जनता के जागने का आह्वान करते हैं, तो उनका यह संबोधन सवर्णों के लिए है। गीता की उक्ति बताकर उसे अर्जुन के जागने में प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन राष्ट्रीय उद्बोधन की यह शैली कुछ समय बाद अपना रुख बदल देती है। उन्हें भारतीय गुलामी की मुक्ति तभी संभव दिखाई देती है जब वह संपूर्णतः जनमुक्ति से संपर्कित हो। इसीलिए धीरे धीरे उनका यह निम्नलिखित पावन स्वप्न भंग होता है। देखता हूँ यहाँ काले, लाल, पीले, श्वेत जन्मे, शांति की रेखा खींची है, क्रांति कृष्णा हो गई है। यह लगभग उसी प्रकार का वर्ग समन्वय है जो गांधी जी चाहते थे, या दिग्भ्रमित होकर प्रेमचंद ने जिसे अपने प्रारंभिक उपन्यासों में निर्णय रूप में थोपने की कोशिश की है। लेकिन निराला इस तथाकथित पावन मनाही स्थिति से बहुत जल्द छुटकारा पा जाते हैं। इसकी जगह ठोकरे खाने वालों के हजारों हाथों के उठते हुए समर उन्हें दिखाई देने लगते हैं। हजारों वर्षों से सताए गए शोषित जनसामान्य की पक्षधरता वह बड़ी तेजी से ग्रहण करते दिखाई देते हैं। इसी मनाही स्थिति में जिस मध्यकालीन कवि को वह अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, वह सूर कबीर, जायसी या तुलसीदास नहीं है, बल्कि वह संत कवि रैदास हैं। छुआ पारस भी नहीं तुमने, रह कर्म के अभ्यास में अविरत बहे। पृष्ठ संख्या 166। ज्ञान गंगा में समुज्ज्वल चर्मकार, चरण छूकर कर रहा मैं नमस्कार। यह चरण स्पर्श जैसे अपने संपूर्ण द्विजभाव का त्याग है। इस संदर्भ में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि शूद्रों की उनकी यह पक्षधरता महात्मा गांधी के अछूते उद्धार की परिकल्पना के प्रभाव स्वरूप उनकी रचनाओं में नहीं आई है। शूद्रत्व की उनकी अपनी व्याख्या है, और मात्र छुआछूत का बहिष्कार भर देने से इस जनसाधारण को इतिहास में वह स्थान नहीं मिल सकता जो उसका अधिकार है। इसीलिए निराला की उपेक्षित के उन्नयन की परिकल्पना उनके अपने संस्कारों और जनसामान्य के प्रति उनकी सहज निष्ठा का प्रतिफल है। ठहरो, अरे मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। निराला के राजनीतिक विचार क्या हैं? इस पर आसानी से कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक बात कही जा सकती है कि वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा से संलग्न या जुड़े हुए नहीं हैं। यह स्वाभाविक भी है। निराला के विराट अहम और प्रतिभा की मौलिक तेजस्विता के आगे कोई भी विचार बौना साबित होता है। सारी विचार सरणियाँ, सारा इतिहास, सारे बाह्य राजनीतिक सिद्धांत और विचार दर्शन उनके विराट व्यक्तित्व में समा जाते हैं। फिर उनका कोई अलग चिन्ह या प्रभाव उनकी रचनाओं पर दृष्टिगोचर नहीं होता। निराला की रचनात्मक ऊर्जा का विकास जिन वर्षों में हुआ है, वह मुख्यतः कांग्रेस और ब्रिटिश राज के बीच घोर संघर्ष का समय है। निराला शुरू में आज़ादी के विचार से भावनात्मक स्तर पर बहुत उद्वेलित दिखाई पड़ते हैं। इस उद्वेलन में कभी उनकी अनुभूतियाँ उच्छल मातृवंदना का रूप लेती हैं, तो कभी राम, तुलसी और शिवाजी के माध्यम से वह गुलामी से मुक्ति का स्वप्न देखते हुए संपूर्ण भारतीय जनमानस को जगाने और उठ खड़े होने के लिए ललकारते हैं। अपने इसी भावनात्मक उद्वेलन के क्षणों में स्वयं अपने मस्तिष्क में तथा जनता के सामने भी वे भारत के अतीत की प्रभावमयी तस्वीर रखते हैं। तपह पुंज गिर कंदराओं और चिन्मय चिंतन की याद दिलाते हैं। इसी भावनात्मक उद्वेलन में वह अपने जीवन का सकल से श्रम संचित फल तथा अपना क्लेदयुक्त तन देकर माँ भारती को मुक्त कराने की उच्छल प्रतिज्ञा करते हैं और भारतीय जनमानस को फिर एक बार वही वार सहने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। इन्हीं उद्वेलित भावना क्षणों में वह स्वतंत्रता के नए अमृत मंत्र का वरदान भी मांगते हैं। पृष्ठ संख्या 167। एक नर जीवन के स्वार्थ सकल बलिहों तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम संचित सब फल क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि सकल श्रेय श्रम संचित फल। दो, नहीं यहाँ थे गुलाम देश यह वही, जहाँ जीते गए क्रोध काम, भाव उठा लो वही जीवन का वार एक और सहो तो सही। तीन, प्रिय स्वतंत्र रो अमृत मंत्र नौ भारत में भर दे। लेकिन धीरे धीरे निराला की रचनाओं में गुलामी से मुक्ति की यह ललकार, आत्म बलिदान की यह उत्कट भावना मंद पड़ती हुई दिखाई देती है। शायद निराला इन दिनों गहरे विचार आंदोलन में फंसे हैं और जब वे इस प्रक्रिया से बाहर निकलते हैं तो उनका स्वर बदला हुआ दिखाई देता है। आज़ादी के लिए इस तरह की ललकार उनके लिए व्यर्थ मालूम देती है। उन्हें पूरी तरह विश्वास हो गया है कि आज़ादी के विचार को जनता की मुक्ति से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और अगर कोई ऐसी आज़ादी मिल भी गई जिसका जनमुक्ति से कोई सरोकार ना हो, तो उस आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। वह इतिहास के उस गहरे नुक्ते पर उंगली रखते हैं जहां बार बार आज़ादी, धर्म, सभ्यता और संस्कृति के नाम पर जनमुक्ति को झुठलाया जाता रहा है। अपनी रचनाओं द्वारा इतिहास की इस पुनरावृत्ति को वह देखना नहीं चाहते, इसीलिए वह ललकार से जनमुक्ति के मोर्चे पर आ खड़े होते हैं। उन्हें यह मुक्ति किसी समझौते में नहीं दिखाई देती, बल्कि हजारों हाथों के उठते हुए समर में दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि जब मसूरिया, बलाई जैसे चरित्र उठ खड़े होंगे तो इतिहास को धोखे की तरह इस्तेमाल करने वाले, जनता को किला बनाने वाले ये बड़े बड़े छली भाग खड़े होंगे। निश्चय ही यह वर्ग संघर्ष की भूमिका का आह्वान है। यहाँ वर्ग समन्वय की वह चेष्टा नहीं है जिसकी गांधी जी लगातार वकालत करते रहे। प्रेमचंद चाहे इससे पृष्ठ संख्या 168 अपने रचना वर्षों के शुरू में जितना भी दिग्भ्रमित क्यों न हो गए हों, निराला कहीं भी इस संभ्रम के शिकार नहीं हुए हैं। निराला की इतिहास दृष्टि इसीलिए प्रेमचंद से ज़्यादा सही और दूरदर्शी है। गांधी जी के विचारों से उन्हें कोई भी वाकफियत कहीं दिखाई नहीं देती। उन्हें लगता है कि उनके उत्तराधिकारियों या खुद उन्हीं के इर्द गिर्द जिन रियासदारों, सामंतों, पूंजीपतियों और लेडी जमींदारों की सफ़ेदपोश जमात बैठी हुई है, ये फिर से उसी तरह जनता को ठगने और उनका शोषण करने के लिए घात लगाए बैठे हुए हैं। उनकी तीखी आंखें अपने शिकार पर लगी हैं। उनकी जनता जनार्दन की यह वाणी फिर से जनता पर अपना जादू चलाने के लिए है, जिससे वह उसकी नसें टोएं और उसे फिर एक बार रिक्त और जर्जर करके उसे अपने ही रक्त में डुबकियां लगाने के लिए छोड़ दें, वह इतिहास की उसी पुनरावृत्ति की अभिसंधि में लगे हुए हैं, जिससे इस बार और अधिक मजबूती से वह जनता को किले के रूप में इस्तेमाल कर सकें। निराला इस बात को बहुत ही गहराई से समझते हैं, इसीलिए उनकी रचनाओं में कहीं भी इस वर्ग समझौते अथवा वर्ग समन्वय की चेष्टा नहीं है। वह गांधी जी की तरह इस बात में कतई यकीन नहीं करते कि साम्राज्यवादी शक्तियों से लड़ने के लिए सारी भारतीय जनता को अपना वर्ग विरोध भूल कर एकजुट हो जाना चाहिए। गांधी जी इसलिए अपनी छत्र छाया में घनश्याम दास बिड़ला से लेकर महंगू चमार तक को खड़ा करने की चेष्टा करते हैं। निराला को महंगू पर तो कोई शक नहीं है, सिर्फ उसके ठगे जाने का शक है, लेकिन घनश्याम दास बिड़ला पर शक जरूर है। यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि घनश्याम दास बिड़ला को क्या पड़ी है, उन्हें कौन सी स्वाधीन चेतना सता रही है, उन्हें गुलाम रहने में कौन सा नुकसान है। नुकसान सीधा तो नहीं, लेकिन है जरूर, यह कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे जनशोषण का उत्तराधिकारी और कौन होगा। उत्तराधिकार हड़पने की सारी सुविधाएं तो उन्हीं के पास हैं। गांधी जी द्वारा जनसाधारण के ट्रस्टी नियुक्त किए जाने के बाद खूब खेलने की जो छूट होगी उसे वह अच्छी तरह समझते हैं। इसीलिए निराला को गांधी जी द्वारा प्रचारित इस वर्ग समीकरण पर यकीन नहीं है। इन्हीं अर्थों में यह कहा जा सकता है कि गांधी जी की दृष्टि जहाँ वर्तमान और निकट भविष्य पर है, वहाँ निराला की दृष्टि सुदूर भविष्य पर टिकी हुई है। हो सकता है कि गांधी जी इस बात को समझते हों कि आगे चलकर वह घनश्याम दास बिड़ला का हृदय परिवर्तन अपनी चमत्कारी मेधा से करा लेंगे, लेकिन इतना तो है ही कि उनकी इतिहास दृष्टि भारतीय संदर्भों में धुंधली और संभ्रमपूर्ण है। इसी को निराला शायद गांधी जी का जहर कहते हैं। अपने एक निबंध चरखा में रविंद्रनाथ के सामाजिक विचारों और इतिहास दृष्टि की संकीर्णता का मजाक उड़ाते हुए वह लिखते हैं, मैं यह नहीं कहता कि गांधी जी निर्दोष हैं, और पृष्ठ संख्या 169 रविंद्रनाथ सदोष, मेरी दृष्टि में जहर दोनों में है और अमृत भी दोनों में है। मुझे समय नहीं मिला कि समालोचना में गांधी जी का जहर भी निकाल कर जनता के सामने रखता। चरखा प्रबंध प्रतिमा पृष्ठ 12। क्या गांधी जी का जहर उनके द्वारा परिवर्तित यही वर्ग समन्वय की भावना नहीं है, जिससे वह आज़ादी के 25 वर्षों बाद भी हम पीड़ित हैं। गांधी जी के इस जहर के बेहोश और दिग्भ्रमित प्रेमचंद को भी निराला नहीं छोड़ते। उन्हें लगता है कि गांधी जी ने जो जहर फैलाया है उसी का प्रतिफलन प्रेमचंद अपने उपन्यासों कहानियों के सटीक और सहज यथार्थ पर आदर्श का मुलम्मा चढ़ा कर करते हैं, और इसीलिए वह एक मेधावी लेखक होते हुए भी भारतीय जनता की सही तस्वीर को धुंधला कर पेश करते हैं। यह दृष्टव्य है कि जिस प्रेमचंद की धुआंधार तारीफ आलोचकों ने इसीलिए की कि वह एक सफल गांधीवादी लेखक हैं, वह भारतीय नैतिकता के पक्षधर मनुष्य के चरित्र परिवर्तन में विश्वास करने वाले लेखक हैं, उनका यथार्थ आदर्शोन्मुखी है। उसी नुक्ते पर निराला ने उनकी आलोचना की और उन्हें दिग्भ्रमित ठहराया। दुनिया भर के पौराणिक खुराफात लोग मानते हैं, पर जीवन के सत्य को नहीं मानेंगे। इसकी क्या दवा है, यह मानते हुए कि यह संस्कार जन एक कमजोरी है। प्रेमचंद जी कहानियों में आदर्श की पुष्टि करते हैं, लिखते हुए आदर्श को बड़ा बतलाते हैं। मैं समझता हूँ कि यदि उनकी अनमोल कृतियाँ वास्तव सत्य ब्रैकेट में यद्यपि उनके आदर्श में यथार्थवाद ही प्रधान है ब्रैकेट बंद को लेकर समाज के दुष्परिणाम के रूप में रंग कर चलती, तो साहित्य तथा समाज को और बड़ी बड़ी वस्तुएं मिली होती। अब इस काम के लिए दूसरे बड़े लेखक की आवश्यकता है। ... सामाजिक पराधीनता प्रबंध प्रतिमा पृष्ठ 98-99। इन्हीं संदर्भों में वह नेहरू के स्वर में बुर्जुआजी के समार का भी मजाक उड़ाते हैं। उन्हें कहीं न कहीं इस बात का डर है कि नेहरू और गांधी के इन प्रयत्नों से जो स्वराज्य आएगा वह उसी राज्य का दूसरा परिवर्धित संशोधित समाज होगा, और निराला अपनी रचनाओं द्वारा उस समाज के भरपूर विरोध में लगे हुए दिखाई देते हैं। निराला की यह साफ राजनीतिक दृष्टि और उनका यह गांधी विरोध उनके निपट व्यक्तिगत संस्कारों की उपज है। कुछ लोगों ने इसे निराला पर साम्यवाद का प्रभाव बतलाया है, यह बात सच नहीं मालूम पड़ती। निराला का विराट अहम किसी भी विचार दर्शन को तद्वत स्वीकार कर लेने वाला नहीं है। स्वाभाविक रूप में इसमें उन्हें अपनी तीव्र मेधा और प्रतिभा और जस्विता का अपमान लगता है। वैसे भी दुनिया की किसी भी भाषा का कोई मौलिक लेखक किसी विचार दर्शन का उल्था अपनी रचनाओं में नहीं करता, न उससे प्रभावित होकर अपनी निजी वैचारिक निष्ठा को मोड़ देता है या उसे निगल जाने देता है। ऐसा हमेशा द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लेखक किया करते हैं। मौलिक लेखक अपने समय की वाह विचारधाराओं के पृष्ठ संख्या 170 आलोक में अपनी ही अनुभूति की सही दिशाओं में पुनर्पहचान करते हैं। मीडिया कर लेखकों की प्रभावित रचनाओं और मौलिक लेखकों की इस अपनी अनुभूति की पुनर्पहचान से उत्पन्न मौलिक रचनाओं में भेद करना किसी भी जागरूक पाठक के लिए कठिन नहीं है। निराला के बारे में भी यही सच है। संभव है साम्यवाद के सिद्धांतों के आलोक में उन्होंने अपनी ही जनसामान्य के प्रति अपरंपार निष्ठा की पुनर्पहचान की हो, उन्हें इतिहास के सही नुक्ते को समझने में मदद मिली हो। इससे अधिक कोई भी प्रभाव साम्यवाद का उनके ऊपर बताना पूर्णतया अनुचित होगा। निराला की विराट मेधा में ये सारे बाहरी विचार सिद्धांत समा जाते हैं और फिर वे रच पच कर उनकी निजी गहरी निष्ठा को आलोकित करते हुए प्रकट होते हैं, उन्हें कहीं भी डुबाते नहीं। इसीलिए गांधी जी के वर्ग समन्वय का विरोध उनकी सहज चेतना सजगता का फल है। उनके अंदर का ठेठ बैसवाड़े का किसान अपनी सहज पारदर्शी चेतना से यह समझ गया है कि इसमें भाई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि निराला की यह जनमुक्ति की चिंता उस समय से उनकी कविताओं का अंग रही है जब हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी। निराला की इस सांस्कारिक गहरी निष्ठा को किसी बाह्य विचार दर्शन से जोड़कर देखना गलत होगा। डॉक्टर रामविलास शर्मा मानते हैं कि निराला अपने कलकत्ते के दिनों से ही राजनीति के संपर्क में आ गए थे, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई हो या ना हुई हो, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई हो या ना हुई हो। निराला बंगला पत्रों के माध्यम से रूसी जनक्रांति और मार्क्सवाद के विचारों से परिचित हो चुके थे। सूर्य कुमार को संतोष न हुआ, गरीब प्रजा का ध्यान सताने लगा। जर्मनी में लड़ाई खत्म हो चुकी थी, कुछ क्रांतिकारियों ने जर्मनी से हथियार मंगाकर भारत में सशक्त विद्रोह के लिए प्रयत्न किया था, पर वह सफल ना हुए। जो नेता युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करके बड़ी आस लगाए बैठे थे कि लड़ाई खत्म होने पर डोमिनियन स्टेट्स मिल जाएगा, वह बड़े निराश हुए। अंग्रेजों ने स्वराज्य का जवाब रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग से दिया। देश के नौजवान क्रोध से तिलमिला उठे। आपस में वह बातें करते कि अंग्रेजी राज्य का खात्मा किस उपाय से किया जाए। सूर्य कुमार बंगला के अखबार पढ़ते, मित्रों से देश विदेश की चर्चा करते। कुछ नौजवान लुक छिप कर उन्हें क्रांतिकारियों के बारे में वह साहित्य पढ़ने को देते जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा था। सूर्य कुमार तेजी से राजनीति की तरफ खींचने लगे। बंगला पत्रों में सूर्य कुमार रूसी क्रांति और वहाँ एक नए समाज की रचना का हाल पढ़ते। महिषादल के आसपास के गांवों में जाते, वहाँ किसानों, कोरियों, जुलाहों आदि का संगठन करते। निराला की साहित्य साधना पृष्ठ 38। पृष्ठ संख्या 171। डॉक्टर रामविलास शर्मा इस कथन से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि वह भी यहाँ कवि की मानसिक बनावट के विभिन्न रेशों का संकेत दे रहे हैं। कोई भी व्यक्ति और उसकी दिमागी चेतना आसमान से नहीं टपक पड़ती। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व, स्वभाव और संस्कारों का निर्माण और संकलन, उसके चारों ओर फैला बिखरा समाज और उसके समय का इतिहास ही करता है। निराला के साथ भी यही है, बल्कि वह अपने समय और समाज के संघात की अद्वितीय उपज हैं। उनकी मानसिक बनावट में हिंदुस्तान की सामाजिक जिंदगी के गहरे धक्के सलवटों के रूप में तह दर तह बैठे हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी भी विशिष्ट विचारधारा से जुड़ना या उनका अंग दिखाना उन्हें कतई गवारा नहीं। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, चंडीदास, विद्यापति, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ, शंकराचार्य की तो चर्चा अवश्य की है, लेकिन अजय घोष, लेनिन, M.N. राय या पट्टाभि सीतारमैया की चर्चा कहीं नहीं की है। अगर निराला क्रांतिकारियों और साम्यवाद के विचारों के प्रभाव में आए भी तो वे मन्मथनाथ गुप्त, यशपाल अग्गे या शिवदान सिंह चौहान नहीं हो गए, जबकि वे होना ही चाहते तो अधिक सुविधा और प्रभावकारी तरीके से हो सकते थे। दरअसल कोई भी राजनीतिक सिद्धांत उनकी पहली प्रतिबद्धता नहीं बन सकता था, वह मात्र साहित्य के प्रति ही सबसे पहले प्रतिबद्ध थे। चाहे उनका झगड़ा गांधी जी से हो, या जवाहरलाल से, या पुरुषोत्तम दास टंडन, या पंडित रामचंद्र शुक्ल, या पंडित इलाचंद्र जोशी, या पंत से, झगड़े का मुद्दा साहित्य और हिंदी भाषा थी। इसी मुद्दे को लेकर वह गांधी जी से उलझ पड़े। भाषा के मामले को लेकर ही ट्रेन में जवाहरलाल से उनकी विनम्र झड़प हो गई। इसी साहित्य के पीछे और उसमें राजनीतिज्ञों की घुसपैठ से चिढ़कर उन्होंने फैजाबाद साहित्य सम्मेलन में टंडन जी की लिहाड़ी ली। मैं राजनीति की बातें नहीं जानता, साहित्य की बातें जानता हूँ। राजनीति प्रभावित है पश्चिम से, साहित्य मौलिकता से पनपा है, मैंने पंडित जी को देखते हुए कहा। लेकिन क्या हिंदुस्तान की दशा वैसी ही ब्रैकेट में रूस की तरह समझते हैं? संस्कृति, हिंदू मुस्लिम मनोवृत्तियाँ क्या वैसे ही वर्ग युद्ध से दुरुस्त होंगी? प्रबंध प्रतिमा, नेहरू जी से दो बातें, पृष्ठ संख्या 30-31। डॉट डॉट सम्मेलन की दुर्दशा, हिंदी की इस हेठी, साहित्यिकों के ऐसे अपमान और प्रभावित अपरिणामदर्शी राजनीतिकों के प्रधान के कारण मैं सम्मेलन में शरीक नहीं हुआ। डॉट डॉट आप समझ सकते हैं, राजनीतिक ब्रैकेट में यहाँ नरेंद्र देव की ओर संकेत है, ब्रैकेट बंद, किस दृष्टि से साहित्यिक को देखता है। बहिर्दृष्टि से सम्मेलन बिल्कुल सफल रहा, लेकिन मेरी निगाह में वह एक प्रहसन था। उसे सभापतियों ने, राजनीतिक सभापतियों ने प्रहसन बनाया। राजनीति में प्रोपेगेंडा करने वाले एक दूसरे के खिलाफ इतर शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन साहित्य के मंच पर टंडन जी जैसे पृष्ठ संख्या 172 प्रांत के समादृत व्यक्ति का भाषण के रूप में प्रलय का अपलाप किसी भी तरह मार्जनीय नहीं कहा जा सकता। टंडन जी पूर्ण रूप से राजनीतिज्ञों को प्राधान्य देकर चले, सरस्वती राजनीति की दासी हों, हिंदी के कवि राजनीतिज्ञों से आगे हैं। प्रबंध प्रतिमा, फैजाबाद साहित्य सम्मेलन, पृष्ठ संख्या 186, 87, 88, 89। मैं हैरान होकर हिंदी साहित्य सम्मेलन के उस सभापति, यहाँ गांधी जी से तात्पर्य है, को देखता रहा, जो राजनीतिक रूप से देश के नेताओं को रास्ता बतलाता है, बेमतलब पहरों तकली चलाता है, प्रार्थना में मुर्दे गाने सुनता है। हिंदी साहित्य सम्मेलन का सभापति है, लेकिन हिंदी के कवि को आधा घंटा वक्त नहीं देता है। अपरिणामदर्शी की तरह जो जी में आता है खुली सभा में कह जाता है, सामने वगले झांकता है। प्रबंध प्रतिमा, गांधी जी से बातचीत, पृष्ठ 25-26। इन सारे प्रसंगों में दर्द केवल राजनीतिज्ञों द्वारा साहित्य और भाषा के क्षेत्र में बेमतलब टांग अड़ाए जाने का है। चाहे टंडन ही हो, गांधी जी, जवाहरलाल या नरेंद्र देव, निराला किसी की भी दखलंदाजी साहित्य के क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं कर सकते। टंडन जी और नरेंद्र देव से वह इसलिए लड़े कि उन्होंने साहित्यिक मंच से साहित्य और साहित्यकार का अपमान किया। गांधी जी से इसलिए कि उन्होंने हिंदी की जगह हिंदुस्तानी की वकालत की और भरी सभा में यह कह दिया कि हिंदी में रविंद्रनाथ कौन है। जवाहरलाल से इसलिए कि वे अपनी मातृभाषा नहीं जानते। सुभाष बोस की तरह उनके मन में अपनी भाषा के लेखकों के प्रति कोई लगाव नहीं है। दूसरे, उन्होंने काशी की साहित्यिकों की एक सभा में, जिसमें प्रेमचंद, प्रसाद और शुक्ल जी भी बैठे हुए थे, यह कह दिया था कि हिंदी में दरबारी ढंग की कविता प्रचलित है। चाहे लड़ाई जिससे भी हो, हम देखते हैं कि वह राजनीति को लेकर नहीं है, भाषा और साहित्य को लेकर है, रचनाकार के निरादर और अपमान को लेकर है, हिंदी की हेठी को लेकर है। इस संबंध में निराला ने किसी को भी नहीं बख्शा। लेकिन इन प्रसंगों में कहीं भी कोई राजनीति की चर्चा या बहस, मुबाहिसा भी नहीं है। निराला राजनीति के या राष्ट्र मुक्ति के सवाल को लेकर कभी किसी राजनीतिक से नहीं उलझे हैं। उससे तो वह अपनी कविताओं में ही उलझते रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक मतवाद से निराला को जोड़ना उनकी संपूर्ण मेधा, रचनात्मक प्रतिभा और वाग्मिता का अपमान करना है। दरअसल निश्चल और पवित्र मानवीयता ही उनका जीवन दर्शन है। उनकी कविताओं की राजनीतिक चेतना मनुष्य है। दुख दर्द और अवमानना में फंसा हुआ मनुष्य, अन्याय और असत्य के विरुद्ध वे बेखटके हर जगह आवाज़ बुलंद करते हैं। उनकी तीखी राष्ट्रीय चेतना और जनमुक्ति के भीतर यही मानवीय नैतिकता का भाव है। पृष्ठ संख्या 173। गलती चाहे गांधी जी की हो या दयानंद सरस्वती की या साम्यवादी रूस की, जो भी फ्राड रचता है, अभिसंधि करता है, उस पर बेलाग वे झपट पड़ते हैं। अगर वे कम्युनिस्ट पार्टी के या मार्क्स के सिद्धांतों में विश्वास करते होते तो उतने ही बेलाग तरीके से कुकुरमुत्ता में कैपिटल और लेनिन ग्रांड यानी मार्क्सवाद और रूसी क्रांति के संबंधों को लेकर इतना भयंकर व्यंग्य नहीं करते। सरसता में फ्राड, कैपिटल में जैसे लेनिन ग्राड। कोई भी पक्का साम्यवादी इस तरह की युक्तियाँ बोलना तो क्या सोच भी नहीं सकता। दूसरे ही दिन उसे पार्टी वाले बुर्जुआ, प्रतिक्रियावादी और ना जाने क्या क्या ठहरा देंगे। इसीलिए मेरा यह निश्चित मत है कि निराला को किसी भी राजनीतिक सिद्धांत के घेरे में नहीं हटाया जा सकता। उनके चरित्र और रचनाक्रम के बीच कोई द्वैत नहीं है। साहित्य और रचना को लेकर वह भीतर बाहर समान है, इसीलिए वे लाग हैं। उनके चरित्र का सच ही उनकी रचना का सच है, इसीलिए उनकी कविता इतनी मार्मिक और प्रभावशाली बन पड़ी है। उन्होंने अपने समय के भारतीय समाज और इतिहास के निरंतर होने वाले संघातों के बीच से ही अपनी काव्य दृष्टि का निर्माण किया है। उसके लिए वह कहीं बाहर की ओर नहीं देखते हैं। उनकी वाणी की ओजस्विता, मार्मिकता और प्रतिभा का निखार भारतीय जीवन की सच्चाई में गहरे बैठ कर हुआ है। उन्होंने अपने निजी जीवन और रचनात्मक व्यक्तित्व के बीच कभी कोई द्वैत नहीं रखा। ऐसा नहीं कि एक जगह तो वह समझौता करते चलें, सुविधा परस्ती की तलाश में दांत निपोड़ते फिरें और दूसरी जगह क्रांति का डंका बजाएं। इसलिए उनकी कविता और रचना में आई हुई वैचारिक दृष्टि शुद्ध, पवित्र और उच्छल है। उसमें कहीं भी किसी भी तरह का एडल्ट्रेशन नहीं है। उनका राजनीतिक और राष्ट्रीय दर्शन, उनका यही व्यक्तित्व दर्शन है। उनकी निजता ही उनकी कविता को समझने, व्याख्यायित, विश्लेषित करने का मूल मंत्र है। उससे बाहर किसी भी रूप में जाना निराला के साथ अन्याय करना होगा।